ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बच्चों को प्यार भी किए हैं, शिक्षा सावधानी भी दी है और कई गुप्त राज बताए हैं कि अगर हम कोई भी ऐसा कर्म करते हैं तो उसका 100 गुना प्रभाव पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फल, अगर कुछ भी गलत काम किया, क्रोध किया, किसी को डांटा, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया तो उसका भी बाबा ने कहा कैसे 100 गुना दंड पड़ता है, वो भी बाबा ने आज विशेष ध्यान खिंचवाया है। दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वर ने हमें अपना बनाया है, वो खुशी होनी चाहिए। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं, सबको सुख देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि खुद की चेकिंग करनी है कि मैं कौन सा फूल बना हूँ, गुलाब का फूल बना हूँ, गुलाब का फूल बन के खुशबू देता हूँ या अक का फूल हूँ। और फिर बाबा ने बताया कि धर्म के लिए बच्चों को क्या क्या करना है। आज बाबा का पूरा स्पष्टीकरण है कि अगर कोई भी ऐसा कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो बाबा की मुरली से। आज की तारीख है 3 जून 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसको भी दुख ना दो। आज का प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना। कितने धर्मराज, कोई भी नहीं चाहता है कि हमें धर्मराज की सजा मिले, तो बाबा कहते हैं अगर धर्मराज की सजा ना मिले, उसकी सजा से छूटना है तो किन किन नियमों का पालन करना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी। पहली बात कि कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, किसी को दुख नहीं देना है। तीसरा, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग के बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। कितना सब कुछ बाबा ने ध्यान खिंचवा दिया, किसी को तंग नहीं करना है। क्रोध नहीं करते तो तंग करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई ना कोई चीज उठा के इधर से उधर कर देंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते ना तंग करने का। तो बाबा ने कहा ये भी तो डिससर्विस है, बाप का नाम बदनाम होता है। तो बाबा कहते हैं, माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। आज का गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। ओम शांति, ये किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? बोलो किसने कहा? बाप दादा ने कहा ना, फिर बच्चे भी तो कहते ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है, इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसके होंगे? दुनिया में भी चले जाओ कितने बच्चे होंगे, पूरे फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो 100-200, चलो 400-500, लेकिन ये तो इतनी बड़ी फैमिली है लाखों करोड़ों की संख्या में। तो बाबा कहते हैं इतने बच्चे और किसके होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, पहले बाबा के इतने बच्चे नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया तो ये हो गया दादा। ब्रह्मा बाबा के पहले इतने बच्चे नहीं थे, लौकिक में था, शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ये दादा हो गया। पहले नहीं थे जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको परलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। दादा खुद कहते मेरे से नहीं मिलती है, देने वाला कौन है? शिव बाबा। ये दादा भी खुद कहते हैं कि तुमको परलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्री हमेशा दादा के वारिस होते, पोत्रे जो होते हैं उनको पता है कि हमारे ग्रैंडफादर के पास बहुत प्रॉपर्टी है, फादर को मिलेगी फिर हमको मिलेगी, तो उनको प्रॉपर्टी तो दोनों से मिलती है ना। पोत्री हमेशा दादा के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादा में जाता है क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। बाबा भी यहाँ कहते हैं तुम हर बच्चे को, एक दिन बाबा ने कहा गरीब हो छोटा हो बड़ा हो कुमारी सबको हक मिलता है। लौकिक में तो पहले जमाने में कुमारी को नहीं मिलता था, आजकल थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम क्योंकि दादी की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजों के पास जो जन्म लेते होंगे तो कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, और राजाओं के पास जो प्रॉपर्टी आती है वो पीढ़ी बाय पीढ़ी चलता ही जाता है ना, तो राजा के पास जो जन्म लेगा कहेगा बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है ही। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्वर्ग के बादशाह। बेहद के बाप से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाह ले रहे हैं। हमको ये बाप पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे? शिव बाबा। तुम अब उनके सम्मुख बैठे हो, कहाँ बैठे हैं भट्टी वाले? बोलो कहाँ बैठे हो, बताओ भट्टी वाले भाई बहने कहाँ बैठे हो? ये भी पता नहीं, बोलो ना, मधुबन में बाबा के सामने बैठे, बोलो। अरे जोर से तो बोलो, मधुबन में अपने बाबा के सामने बैठे, बाबा तो है ना सामने, पक्का है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख का नशा भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है, जिसका बहुत बाबा से प्यार है, हाथ खड़ा करो, सबका है ना। तो बाबा भी देखते हैं कोई का तो दिल में बहुत लव रहता है, हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस संसार, हाँ कोई के दिल में बड़ा लव रहता है, हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप कैसा है बताओ? बाबा कहते बेहद का बाप कैसा है? कई कहेंगे लवली है। बाबा कहते बेहद का बाप जो है बहुत मीठा है, है। कभी कभी दादी जानकी कहती थी इतना मीठा है, बहुत प्यार से कहती थी। पता है क्या कहती थी, दिल करता खा लूं मीन्स बाबा के प्यार में खो जाऊं। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप कितना मीठा है, बताओ कितना मीठा, हाथ करो ना ऐसे, बोलो इतना मीठा है कि हम बाबा की गोदी में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई के दिल में तो बड़ा लव है, हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते, इतना मीठा है और इतना इंटेलिजेंट बनाते जो हमको राजाई के लायक बनाते, माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया। बाबा हमेशा कहते दुनिया में तो कहते ना नालायक ऐसा बोलते हैं, बाबा कहते थे नालायक कि ये लायक ही नहीं है। दुनिया में तो नालायक को समझते गाली देना, बाबा कहते हैं कैसे बन गए, बाबा क्या बनाते और माया क्या बनाती है, माया ने तो बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु तो कुछ समझते थोड़ी थे। कई बार बाबा के पास VIP ले आते थे, बाबा पहले ही कहते थे SSO को नहीं लाओ, बाबा तो किससे मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, बाबा को बच्चों से प्यार है, बच्चे ही समझते हैं ये बाबा है हमारा, उनको खुशी होती है, बाहर वाला क्या करेगा, आएगा कहेगा गुरुजी से मिल के, इनके हेड से मिल के आ गए। तो बाबा के पास आते थे कोई, कभी कभी मिलाना भी पड़ता था किसी काम के कारण। तो बाबा कहते हैं कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वे कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना, तो कहा जरूर। यही नशे से कहा बाबा हम भी हैं ब्रह्मा कुमार, लेकिन को नशा नहीं होता था, बस जरूर कह के हाँ हाँ ऐसे कर देते थे। तो कहा जरूर, वह सिर्फ अक्षर सुनकर कहा परंतु दिल में लगा ही नहीं कि हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, वो बुद्धि में नहीं बैठता है। सुन लिया हाँ कर दिया, परंतु बाबा तो समझ आते थे ना साकार में, बाबा के पास जब भी कोई आता था बाबा उसको देखते समझ आते थे कि इसकी बुद्धि में बैठ रहा है, इसके अंदर दिल में इतना प्यार है या ऊपर ऊपर से मिल रहा है, तो बाबा समझ आते थे। कभी कभी बाबा तो बाद में रिजल्ट भी सुना देते थे। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना, तो कहा जरूर, ये सिर्फ सुनकर कहा परंतु दिल में लगा नहीं, कि लगा ही नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे। अगर इतना बुद्धि में बैठता कितना खुशी होती कि मैं किससे मिल रहा हूँ। तो बाबा कह रहे कि उसको तीर लगा ही नहीं है कि हम सचमुच शिव बाबा के बच्चे, तीर लगा ही नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। हमारे पास वैसे तो हमारे पास कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठ, बाबा अपने बच्चों के रिजल्ट सुना रहे, बच्चे सब हैं लेकिन कई ऐसे हैं जिनको बुद्धि में पूरा नहीं बैठता, थोड़ा बैठता है, वह खुशी वह रुहब दिखाई नहीं पड़ता। बाबा समझ आते थे जब शुरू में बच्चे बाबा से मिलने आते थे, माताएं बंदेली आती थी, आंखों में आंसू आ रहे, और दूसरे बच्चे जो आते थे बाबा को पहचाना उनका चेहरा ही खिल जाता था। तो बाबा कहते वो खुशी वो रुहब जो उनके चेहरे से दिखाई देता था, तो वह खुशी वह रुहब दिखाई पड़ता है, अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, ये सारा चेहरे पर ही आता है, अभी दिखाई पड़ता है, तुम सजनों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा। कल भी बाबा ने कहा ना कि बाबा आकर के बच्चों का क्या करते हैं, ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। तो तुम सजनों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है, तुम जानते हो हम साजन की कौन है, भाई बताओ साजन की कौन है, जो कहते हम साजन की, बहने तो है ही हैं, बहने खड़ा करो हाथ, साजन की सजनियां हैं, और भट्टी वाले भाई हाथ खड़ा करो, है कि नहीं, पक्का है कि नहीं, बाबा पक्का कराते हैं। बाबा इसलिए पक्का कराते कि आत्मा की स्थिति पक्की रहे। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो साजन की संज्ञा, एक खेरुत, खेरुत कौन होता है, जो खेती का काम करने वाले होते हैं ना। तो बाबा एक कहानी सुना रहे हैं, एक खेरुत खेती के काम करने वाले की लड़की की कहानी। पहले जमाने में ऐसा होता था ना, राजाएं देखते थे कहीं भी गए, चाहे किसान की हो कुछ की, सुंदर होती थी, बहुत अच्छी होती थी, उसको ले आते थे। तो वो कहानी सुना रहे हैं बाबा, एक खेरुत खेती का काम करने वाली की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया। अब जो जंगलों में घूमे, खेतों में खुला घूमे, और वो कैसे जाकर के महल के अंदर फर्श के अंदर बैठेगी और ऐसा करेगी, वो तो आराम से लाइफ है, इस प्रकार खुली लाइफ है। तो कई कई तो समझ आते हैं जो दैवी गुण वाले होते हैं, कई कई तो राजाई में आ जाते हैं, कई कई तो फिर गांव के गांवड़े रहते हैं ना, तो फिर वो आते नहीं है। तो बाबा कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, बाबा बच्चों को इतना ऊंच बनाता है, कई कई बच्चे फिर माया के प्रभाव में आकर के फिर उसी रंग में चले जाते हैं। तो बाबा बताते हैं, एक राजा खेरुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापिस गांवड़े में छोड़ा, नहीं चल पा रही, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वापिस उसको गांव में छोड़ दिया। बोला, तुम राजाई के लायक ही नहीं हो, यहाँ भी बाप श्रृंगार करते, समझा, यहाँ बाबा श्रृंगार करते। माया क्या करती है, वो श्रृंगार को खराब कर देती है, उतार देती है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भी बाप श्रृंगार करते, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, भगाया, किस लिए भगाया, बाबा भी बताते हैं कहानी में भी है कि पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, ये सब है इरिलीजियस माइंडेड। अब जिनको बुद्धि में ज्ञान नहीं है, कितना भी समझाओ तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, तो उनको क्या कहना पड़ेगा, इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसी दुनिया चलती रहती, वो यही समझेंगे दुनिया ऐसे चलेगी, जैसे गंदी ऐसे चलेगी। तो बाबा कहते समझते हैं दुनिया ऐसे ही चलती है, कुदरत है, बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते। दुनिया पहले तो बहुत भक्ति भाव था, घरों में सब के सब जाते थे, मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, और आजकल तो ना कोई मंदिर जाएगा ना कुछ धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, क्योंकि बुद्धि में बैठता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत हैं जो मंदिर ठिकाने भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं, गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं। गवर्नमेंट भी क्या है, धर्म निरपेक्ष है, कोई कुछ भी करे। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है, भारत में किसका धर्म था, अब किस धर्म के हैं बिल्कुल नहीं जानते, अभी तुम बच्चे ही दैवी कुल के हो। नशा, बाबा कहते तुम कौन हो, तुम बच्चे अभी दैवी कुल के हो, जैसे भी क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। अभी हम बनते हैं ब्राह्मण कुल के, ईश्वर के कुल के, और भविष्य में बनेंगे दैवी कुल के। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाए। इस समय बनते हैं ब्राह्मण कुल के, फिर पावन बनते बनते 21 जन्म दैवी संप्रदाय में रहेंगे, दैवी गोद में जाएंगे, आगे थे आश्री गोद में, आश्री गोद से फिर तुम कहाँ आए हो बताओ, कहाँ आए हो, आश्री गोद से तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, कितना बड़ा वंडर है कि करोड़ों की संख्या में एक बाप के बच्चे कौन हैं, आपस में भाई बहन हैं। कितना बड़ा वंडर है, सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के। अब आप देखते हैं ना, बाबा के बच्चे सब ब्राह्मण हैं। कहीं पर चले जाओ, किसी भी सेंटर पर चले जाओ, देश विदेश में चले जाओ, ब्राह्मणों को नियम प्रथा मर्यादा सब एक है। सब मुरली सुनेंगे, सब पावन बनेंगे, सब बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे बाबा की याद में। तो दुनिया वाले भी हैरान होते कि सब कहीं भी चले जाओ सब एक जैसा ही है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बनाया ना, बड़ा परिवार है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में सब कहीं ब्राह्मण कुल है क्या? हम तो श्रीमत पर चलते हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना। ब्राह्मणों को क्या करना है? श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है और सबको रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता। ना तो वो बेहद के बाप को जानते हैं, तो बेहद के वर्षे को कैसे जानेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो, बुद्धि से जानते हो कल पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। कलब पहले वाले कौन है? कलब पहले वाले वर्षे वाले है ना, थोड़ा तो नहीं, पूरा वर्षे के अधिकारी है ना कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। बाबा कहते कलब पहले वाले पूरे वर्षे के अधिकारी हैं। बुद्धि से जानते हो कलब पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे। शुरू में कई नए नए आए थे, ज्ञान सुना और चले गए, फिर बाद में कई सालों के बाद आते हैं, कहते हमने तो समझा नहीं था, इतना अच्छा ज्ञान, इतने बाबा के बच्चे होंगे। फिर आ जाते हैं ना, तो बाबा कहते कभी ना कभी तो आएंगे ना, क्योंकि वो ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है ना। तो बाबा कहते थोड़ा भी बुद्धि में हो गया तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी मंगलवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, फिर माया क्या करते, कल पतित बन पड़ते। बाबा कहते देखो क्या है, आज पावन बन रहे हैं, फिर जाकर के आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं, किसका खराब संग लगने से भूल जाते। पतित क्यों बनते हैं? बाबा हमेशा संग पर सावधानी देते हैं। संग भी कई प्रकार के, ऊपर से बड़ा मीठा होता है, अंदर ही अंदर कई तरह से खोखला करने वाला होता है। कितना वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं कि किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत, अब सुनते जाना ध्यान से, तो बहुत पाप आत्मा बन जाए। क्यों? क्योंकि इतना सब लिया फिर वो गिलानी करने लग जाते, बाप का हाथ छोड़ा तो फिर जो कमाया वो खत्म, बहुत पाप आत्मा बन जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते, अब सुनो कितनी बड़ी बात, जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है, कंपेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने किसका मर्डर कर दिया जेल में चला जाएगा, पाप लगा। बाबा कहते उस पाप के भेंट में ये बड़ा पाप है, बाप का बने, बाप से वर्षा लिया, बाप का हाथ छोड़ दिया, जाके पतित बने तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो बाबा कहते हैं वह पाप भी थोड़ा है, यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। क्यों पाप लगता है? क्योंकि बाबा का बने जाके विकारी बने, फिर डिस सर्विस होती है, और जो डिस सर्विस हुई उसकी सारा बोझ उस पर चढ़ता है, फिर बाबा भी तो कहेंगे ना, इतना समझाया तुमने नहीं माना। बाबा भी खुद नहीं देते हैं, धर्मराज के द्वारा ये देते हैं सजा। अज्ञान काल में भी इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता। अज्ञानी को तो पता नहीं वो गलत काम कर देगा तो उसको, लेकिन ज्ञान में चल के सब कुछ जानकारी होते हुए भी अगर करते तो बाबा बता रहे, हिसाब बता रहे हैं, अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान काल में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कॉमन होता है, मारना पीटना लड़ना झगड़ना क्रोध करना गाली देना तो कॉमन है। तो बाबा कहते वो तो अज्ञानी है ना। अज्ञान काल में मनुष्यों में क्रोध बहुत होता है, जहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो अब क्या होगा, 100 गुना दंड पड़ जाए। अंतर बेसमझ भी होता है दुनिया में, लौकिक में भी कोई बेसमझ होता है, कुछ बेसमझ गलती से किया उसको छोड़ देते, नाबालिग किया उसको भी छोड़ देते हैं, जो समझदार होकर करता है उसको सजा मिलती है। यहाँ बाबा कहते ज्ञान में समझदार होकर के करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। क्यों अवस्था गिरती है, क्यों अवस्था ऊपर नीचे होती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बनकर जरा भी परमात्मा की फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता। आज बाबा कितना सावधान कर रहे कि बाबा के फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन जरा भी उनकी फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है। अब देखो दूसरी बात, धर्मराज कौन है, बाबा धर्मराज का रूप क्रिएट करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का वैसे है, शंकर के द्वारा प्रेरणा देते हैं, तो धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते, शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना थी तो बाबा ने कितने साक्षात्कार कराए, नई दुनिया के कराए, गोपियों के कराए, कैसे वहाँ सुखी रहते हैं, फिर कैसे नहीं मानते हैं, तो धर्मराज के भी साक्षात्कार कराए। संदेशी ध्यान में जाती थी, धर्मराज की सजाएं देखती थी तो बाबा को कहती बाबा बस करो बस करो, बहुत वो चिल्लाती थी, तो बाबा ने वो साक्षात्कार क्यों कराए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी ऐसी बातें आएंगे तो पहले से जानकारी हो तो बाबा पहले से ही सावधान करते ना। तो बाबा कहते धर्मराज का के रूप का भी साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते। लौकिक में भी जज क्या करता है, सजा देने से पहले उसके सामने प्रूफ बताता है कि तुमने ये किया अब ये सजा है। तो बाबा कहते धर्मराज भी सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, क्या प्रतिज्ञा की थी, एक तो पावन बनेंगे, दूसरा क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया। धर्मराज भी ऐसे सजा नहीं देगा, वो सारा खाता सामने रखेगा कि तुमने ऐसा किया अब देखो ये सजा है, तुमने दुख दिया तंग किया अब खाओ सजा। अब धर्मराज भी ऐसे कहेगा खाओ सजा। फिर बाबा कई बार बताते हैं ऐसे बच्चे बनो कि जब धर्मराज के पास जाओ धर्मराज आपको सल्यूट करे, अब धर्मराज के सामने सिर न झुकाना पड़े, धर्मराज आपको सल्यूट करे। तो बाबा कहते हैं फिर वो क्या कहेगा, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने कितनों को दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देंगे, जज भी बिना इन्फॉर्मेशन सजा नहीं देता, तो धर्मराज भी बिना साक्षात्कार सजा नहीं देंगे, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। अब जिसने बाबा का हाथ छोड़ा या गलत काम किया अभी तो कहेगा मैंने कुछ नहीं किया मैंने राइट किया सब ठीक है, लेकिन जब धर्मराज के सामने जाएगा उस समय बोलेगा बरोबर मैंने बाप का हाथ छोड़कर ये गलत काम किया है। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया, बदनामी कराने से बहुतों पर आफत आ जाती। शुरू में बहुत हुआ, कई कई बाबा के बच्चे बने, फिर सारी धारणाओं पर चले, फिर छोड़ दिया और फिर बोला ये ठीक नहीं है, क्या अपनी गलती नहीं बताएंगे, दूसरों की बताएंगे। फिर कई माताओं कन्याओं अबलाओं पर अत्याचार होने लगे, उन पर बंधन आने लगे, तो बाबा कहते उसका भी जो हिसाब है वो भी उस पर चढ़ता है, फिर सारा दिन बदनामी कराने वाले पे पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप आत्मा, बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखो तो कहाँ देखो। बाबा कहते बड़े से बड़ा पुण्य आत्मा देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ देखो। फिर बड़े से बड़ी पाप आत्मा देखना हो तो क्या कहेंगे बाबा, क्यों गलत काम किया ना। तो बाबा तो हर बात स्पष्ट करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट जाते। शुरू में मालूम हो साकार बाबा के टाइम पर जो पीछे का गेट है उधर जहाँ आप देखेंगे भाइयों के वॉशरूम है, उसके थोड़े उसी साइड में कपड़े की भट्टी थी। रात को एक भट्टी बनाई हुई थी धीमी आग पे, उसमें भट्टी के अंदर कपड़े डाल देते थे धीमी आग पे, वो गर्म होते रहते थे। सुबह कुछ भाइयों की ड्यूटी थी, साकार में भी बाबा खुद खड़े होकर के कपड़े जो होते थे ना उनको पत्थर के ऊपर मारते थे, उसको कहते सटना है, मारते थे पत्थर पर। और कई पुराने कपड़े होते थे फट जाते थे और कोई अच्छे कपड़े, और उस समय तो पानी भी बहुत अच्छा था, कपड़े इतने अच्छे धुलते थे, इतने व्हाइट होते थे, बाहर वाले लोग कहते थे आपके कपड़े कहाँ से धुल के आते हैं, क्या विदेश से धुल के आते हैं। बाबा और बच्चे बताते नहीं ये तो यहाँ ही धुलते हैं। तो बाबा वो उदाहरण दे रहे हैं, धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट जाते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन नहीं कर सकते तो चले जाते। कैसे, बाबा ने कोई सावधानी दिया, कोई शिक्षा दिया, सहन नहीं होती तो भाग जाते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अविज्ञा की तो सजा खानी पड़े। बाबा के बने डायरेक्ट गोद में आए फिर उनकी अवज्ञा की तो बाबा की तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। और जो आया ही नहीं, जिसको पता नहीं, जो भी करेगा कर्म सजा उसकी कम होगी। तो बाबा कहते ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा के टाइम पर इतने स्ट्रिक्ट थे कि जो पार्टी लाने वाली बहन थी पक्के नियम पूरी उनके चार्ट पूरी धारणा, क्योंकि ऐसा ना बाबा के पास आए और बाबा को देख के पता नहीं कौन है। तो बाबा कहते थे आते इतना बड़ा भाग्य मिलता है तो रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बाबा बता रहे हैं जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक ने भी हाथ छोड़ा, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक ने हाथ छोड़ दिया भिखारी बना तो उनका पाप ले आने वाले पर पड़ जाएगा। अगर एक ने हाथ छोड़ा भिखारी बना तो उनका पाप ले आने वाले पर पड़ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में लाना नहीं चाहिए। बाबा हमेशा कहते थे बाबा के बच्चे हैं जो आते हैं वो बाबा को पहचाने और बाबा से वर्षा लेने वो ध्यान दे। तो बाबा कहते थे इंद्र सभा है ऐसे किसी को नहीं ले आना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना, इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आए। शास्त्र में कहानी ना, एक बार एक परी अपने साथ किसी भिखारी को ले आई, जैसे आई सब परियां कहे बांस आती है बांस आती है, फिर पता किया तो ये परी एक भिखारी को लाई है, फिर उसको श्राप मिल गया तो श्राप मिल गया पत्थर बन गई। तो बाबा कहते हैं बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसको ऐसा बना देते ना। तो बाबा कहते हैं इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसी कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई। बाबा तो पारसनाथ बनाते, बाबा पत्थर नहीं बनाते, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाते, बाबा तो पारसनाथ बनाते हैं। फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं, राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेता है, अब अगर बाबा फिर कहानी सुन, पहले एक खेत वाले की सुनाई, फिर अब ये गरीब की कहानी सुना रहे हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? कहां राजा का बच्चा बना और कहां ऐसा बना, फिर राजा ने इसको निकाल दिया तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे, यहां भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। बाबा के बने, बाबा का हाथ छोड़ा, तो बाबा कहते फिर क्या होगा? बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कोई भी अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, कई तो बाबा को साधारण देख करके समझते नहीं है, बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती। शिव बाबा इनके तन में है, भूल जाते हैं, साधारण को याद करने लगते हैं। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जो गंदे बन पड़ते हैं, ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। शुरू से एक नियम बना हुआ था, जो नियम मर्यादाओं को तोड़ते हैं उनको एक साल दो साल तक तो आने नहीं देते, पहले से फिर फॉलो करें और पक्का चार्ट हो फिर बाबा के पास आने देते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्र सभा है, अब कितनी बड़ी बात, मधुबन तो है ही है, लेकिन हर एक सेंटर इंद्र सभा क्यों बाबा बता रहे हैं कि ऐसे जो बाप का बन करके हाथ छोड़ के चले गए हैं वो आना भी चाहते हैं, पहले वो पक्के नियमों पर चले। हर एक सेंटर इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते, बच्चों पर भी रखते हैं, बाबा भी सब पे नाम रखते थे। दादियों के नाम सुनेंगे, पहले नाम सुनेंगे और दादियों के जो नाम रखे हैं, बड़ी दादी प्रकाशमणि का नाम पहला पता है क्या? रामा था, बाबा ने रखा प्रकाशमणि। सब दादियों के बाबा ने नाम रखे थे, तो लौकिक में तो पर ये पत्थर के नाम रख देते हैं, लेकिन बाबा तो बच्चों को ऐसे ऐसे नाम दिए। तो बाबा कहते हैं वह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं, कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है, ऐसे प्योर रतन है बाबा के बच्चे जिसमें कोई भी दाग नहीं है, कोई फ्लो नहीं है। जोहारत में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं, यहाँ भी नंबर वन रतन है। कोई कोई रतन तो बहुत वैल्यूएबल है, जो रियल रतन होते हैं उसकी बहुत कीमत होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के बच्चे भी कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते। बाबा जी को पूरा चार्ट बता रहे बच्चे क्या करते हैं, कोई तो इतनी सेवा करते हैं बात मत पूछो, कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में कितना फर्क है। कभी कभी बाबा साकार में मुरली क्लास में आते थे, दोनों फूल लेके आते थे, कभी गुलाब का ले आते थे, कभी दोनों ले आते। बाबा कहते देखो ये अक का फूल है, ये गुलाब का फूल है, अब अक के फूल से क्या बनना है, गुलाब के फूल जैसा बनना है। गुलाब के फूल अक के फूल में कितना फर्क है, शिव पर दोनों चढ़ाते। अब बाबा के बच्चे अक के फूल की तरह वो भी शिव पर चढ़ते, गुलाब के फूल भी चढ़ते, शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। कभी कभी बाबा आते थे बगीचे, मुरली से पहले बगीचे में जाएंगे, कई प्रकार के फूल ले आते थे। कभी कभी एक माली और फूलों की टोकरी बना के देता था, बाबा फूलों की टोकरी लेके आते थे। बाबा कहते सब मेरे बच्चे फूल बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक फूल बच्चों को दिखाते थे, तो बाबा देखते थे सारे बच्चे फूल जैसे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं गुलाब के फूल अक के फूल में कितना फर्क है, शिव पर दोनों चलाते हैं, अब तुम जान गए हो हमारे में फूल फूल कौन है, उनकी सब मांग नहीं करते। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, जब कहाँ प्रोग्राम होता था कहते थे कुमारका दादी को भेजो, गंगे दादी को भेजो, मनोहर दादी को, जगदीश भाई को भेजो, ऐसे ऐसे नाम थे, बाबा कहते तुम भी तो बनो ना, सबको बुलाते रहेंगे, जिससे बाबा कह रहे हैं सब उनकी मांगनी करते, बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, प्रोग्राम के लिए कहते थे अच्छे अच्छे स्पीकर वो भेजो, अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं, थोड़े कहाँ कहाँ जाएंगे, रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं, ये बगीचा है ना, बाबा बगीचे में सैर करते थे और बाबा कहते चैतन्य फूलों का बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना, ये ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी कही जाती है, तो बाबा कहते ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का भारी मेला लगता है, नदी ऐसे समा जाती पता ही नहीं पड़ता कि वो सागर में समा गई, तो बाबा कहते जहाँ सागर और नदी का बड़ा मेला लगता है, बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, ये चैतन्य ज्ञान सागर है, तुम भी कौन हो, अब बताओ कौन हो, बहने टीचर बहने हाथ खड़ा करो, तुम कौन हो, चैतन्य ज्ञान नदियां, माताएं क्या हो, ज्ञान नदियां हो या ज्ञान नाले हो या ज्ञान तालाब हो, बोलो कौन कहता है ज्ञान नदियां, हाथ खड़ा करो, ठीक है, और भाई ज्ञान नदियां है क्या है, तालाब तो कोई नहीं है ना, तालाब तो कोई नहीं है, जो तालाब हो वो हाथ खड़ा कर दो, बाबा भी देख ले, तालाब कोई नहीं, सब नदियां हैं, तो बाबा कहते तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो, वह तो है पानी की गंगाएं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है परंतु आश्री संप्रदाय ये भी भूल गए हैं, हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, वहां पर एक चतुर्भुज का चित्र बनाया हुआ है तो उसमें भी दिखाते ये गंगा है, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि चतुर्भुज कौन है, बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, टाइटल मिला, पहले बाबा ने कहा गुलाब के फूल बनना है, ईश्वर की गोद में बैठे हैं, और अब क्या बनते हो, स्वदर्शन चक्रधारी, बरोबर तुम इस समय स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, पहले बाबा ने कहा चैतन्य ज्ञान गंगाएं और अभी हो सच्ची ज्ञान नदियां, वह है पानी के, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी हैं, मनुष्यों को कभी चार या आठ पूजा होती है ही नहीं, होती है कभी, अभी किसी की दो से तीन पूजा हो जाएंगे तो कहेंगे सर्जरी करा के किसी को हटाओ, उसको ठीक नहीं मानते ना, तो बाबा कहते मनुष्यों की कभी चार या आठ भुजा होती ही नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं, हम तो 100% बेल समझते, अभी क्या बने 100% समझदार, बाबा हमको क्या बनाते हैं, हम तो 100% बेल समझते, बाबा की गोद लेने से हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, भल यहाँ कोई राजा हो परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क, आजकल के राजाओं को देख लो, पहले जमाने के राजा और आज के राजाएं क्या है, उससे तो अमीर लोग बहुत हैं, किस प्रकार से रहते हैं, लाइफ क्या है, तो बाबा कहते भल राजाएं हो, स्वर्ग के सुख और आपके सुख में रात दिन का फर्क है, उनके सुख में और ही दुख है, कभी गवर्नमेंट ये टैक्स ना लगा दे, ये ना लगा ले, हमारे महल ना ले ले, तो ये सब आते हैं, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है, तुम्हारे में भी कोई ऐसे हैं जो बाप को समझते नहीं हैं, तो अपने को भी नहीं समझते, ना बाबा को समझते ना अपने को समझते, तो देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। अब चेकिंग के लिए मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुलटा तो नहीं बोलता हूँ, आदत पड़ जाती है, एक ने बोला दूसरा भी साथ में। उल्टा सुलटा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते, बाबा के पास आते थे ना, कोई कितना भी कहे बाबा समझ आते थे। तो बाबा प्यार से उसको बहुत समझाते तो रियलाइज करता, तो बाबा सचमुच मैं ऐसे करता हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे लग नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकल, जो सेवा करते हैं एक ही लगन से बाबा को याद करते, दिल से साफ हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमाबरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा, लौकिक में भी कहते हैं ना, ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा था, ना पैदा होता, अरे हो गया फिर कहेंगे मर रहे तो अच्छा। तो बाबा कहते जो ऐसा होता तंग करता है उसके लिए क्या कहते हैं, बाप का ना फरमाबरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, मुआ भला मीन्स मरा भला, क्योंकि तंग कर रहा है ना, नाम बदनाम कर रहा है। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है और ये कपूत है। अब बाबा बोलते नहीं थे लेकिन बाबा तो समझते थे ना, तो अंदर से समझते थे, उसके सामने तो नहीं बोलेंगे, अंदर से समझते थे, फिर बाबा बाद में उसको रियलाइज भी कराते थे। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये कपूत है, बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना ही नहीं है तो क्या करेंगे। कई बार बाबा कहते उसको लेना नहीं है तो बाबा क्या करेंगे, उसको क्या तदबीर कराएंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने तो बच्चा ना बने तो वह बच्चा हकदार हो नहीं सकता। उस समय कई पूछते थे ना, बाबा कहते बच्चा नहीं बनता तो जाके नौकरी करे, जो करना है करे, लड़की है तो उसका तो जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं बाप पवित्र बने बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार हो नहीं सकता। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। कई कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते थे हम शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। अच्छा, जिन माताओं ने बाबा को वारिस बनाया वो हाथ खड़ा करो, बाबा देखेंगे। थोड़े से माताओं ने बनाया, सबने नहीं। भाइयों ने वारिस बनाया, शिव बाबा को बच्चा बनाया? अच्छा देखो, तो बाबा कहते हैं फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना। बहुत वंडरफुल बच्चे कहते बस हमने तो बाबा को कह दिया ना हम आपको वारिस बनाए, यहाँ आके बैठ जाए। अरे यहाँ आके बैठ जाएंगे ना, सेवा करेंगे ना कुछ करेंगे, हम बाबा को वारिस बनाए हम यहाँ बैठ जाए। कई कई ऐसे भी होते हैं हमको यहीं बैठना, आ जाते हैं जाने का नाम नहीं लेते, ना सेवा करेंगे तो और ही बोझ चढ़ जाता है। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई है, नहीं गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है। ट्रस्टी बनो, शिव बाबा को वारिस बनाओ, अपने परिवार में रहना, सबको संभालना भी, परंतु ट्रस्टी होकर रहना। ऐसे नहीं तुम्हारे बच्चों को भी बाप बैठ संभाले। बाबा कहते बाबा इसलिए थोड़ी आया, तुम्हारे बच्चे ज्ञान में ना चले उनको भी बाबा संभाले। उनकी जिम्मेवारी आपकी है, आपने आपकी रचना आपको पालना है, बाबा थोड़ी करेगा, बाबा तो ज्ञान देगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को भी बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक जाते, कई तो ऐसे हैं, हमने बाबा को इतना दिया, बाबा को इतना दिया, अरे बाबा को इतना क्या दिया, देने वाले को क्या देंगे। फिर कहेंगे बाबा हमारी खातरी करे, बाबा हमारी ये करे, तो बाबा कहते ऐसे संकल्प वाले भटक जाते, बुद्धि भटकी, न ज्ञान न वर्षा ले सकते हैं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके। नहीं तो क्या होगा, बाबा कहते हैं नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाए। अपवित्र बन के बैठे रहेंगे, बुद्धि इधर जाती रहेगी, समझेंगे कुछ नहीं, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, बाबा क्लैरिटी करते, क्लियर करते कि क्या होगा, क्या स्थिति होगी। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक ला है। बाप कहते फिर खबरदार रहना, क्यों बाबा बता रहे हैं कि बच्चों को सावधान कर रहे हैं। बाप कहते खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप किया तो ये मरा। बाबा ऐसे कहे पर कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप किया तो ये मरा। बहुत बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। कहेंगे अज्ञान में तो पता ही नहीं क्या क्या संकल्प चलते थे, बाबा के बने तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते ये तो होगा ही, डरना नहीं है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी उथल सारी खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं ना फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी। होती है कभी कभी वैद्य की ऐसी दवा होती है कि वो दवा खाते ही बाहर पता नहीं क्या क्या दाग या क्या क्या निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा वैद्य पहले ही बताता है ये निकलेगा क्योंकि बीमारी निकल रही है। तो बाबा कहते हैं वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, खूब तूफान में ले आएगा। कभी कभी बाबा बच्चे बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा माया बहुत तंग करती है, तूफान आते बाबा को कहते बाबा इनको कौन नहीं आए। बाबा कहते मैं माया को कह रहा हूँ जोर से आओ जोर से आओ ताकि मेरे बच्चों की परीक्षा लो कितने मजबूत बने। तो बाबा कहते डरो नहीं, तो बाबा रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग एंड राइट की बुद्धि मिली है और कोई को राइट रॉन्ग की बुद्धि है ही नहीं, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। तो जो अच्छी सेवा करेंगे, प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं, उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं के प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भाव, जैसे लहरों में लहराती व डूबती आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसी दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगे। बाबा ने कहा हालात बिगड़ने दो, देखो फिर क्या हाल होता, आएंगे आपके पास। जैसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना ऐसे अनेक सुख शांति के भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगे। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए, ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतिने सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माएं भी संपन्न बना सको। बाबा कहते हैं सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से निकलेंगी। अव्यक्तिशयना टाइटल जो चल रहा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करनी है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इसी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी मधुबन निवासी तथा सभी भाई बहने सुनेंगे कि कल भी आपको बताया गया था, मधुबन निवासी समर्पित भाई उत्तम भाई जिन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में चले गए, उनके लौकिक रिश्तेदार भी कल आ चुके हैं। आज दोपहर को 2:30 बजे यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा कराने के लिए लाया जाएगा। उस चारों धाम की यात्रा कराने के बाद उनको फिर नीचे शांतिवन तपोवन ले जाएंगे और वहां से मुक्ति धाम में अंतिम विदाई दी जाएगी। तो इसलिए सभी भाई बहनों को, भट्टी के भाई बहनों को, सभी को पहले से बता रहे हैं, 2:30 बजे से पहले 2:15 बजे के अंदर ही सभी दोपहर का भोजन स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जब पार्थिव शरीर को लाएंगे तो उस समय भोजन आदि करना बंद भी होगा, तो उससे पहले ही स्वीकार कर लेंगे। उत्तम भाई जो है लगभग 40 साल से बाबा के समर्पित बच्चे, पहले शुरू में कुछ दिन यहाँ और शुरू में कुछ समय इन्होंने ओम शांति भवन में सेवा की, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काफी टाइम से सेवा करते रहे और फिर शांति वन में, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इतनी सेवाएं हैं, तो उनको फिर नीचे ही जाना पड़ा। काफी टाइम से शांति वन में रहते, बहुत अथक सेवाधारी, लेकिन अचानक कुछ भी हो जाता है। बाबा ने अचानक का पाठ तो पढ़ा ही दिया है, अचानक सोए सोए ही रात को चले गए बाबा की गोदी में, इसलिए कल तो हम सब बाबा की याद में बैठे थे और अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में, खुशियों में, और बाबा से वायदे करते हुए कि बाबा हम कौन सा फूल बनेंगे, खुशबूदार गुलाब का फूल बनेंगे, इसी याद से बाबा की याद में बैठेंगे। और फिर उसके बाद भट्टी के भाई